તારીખ 18-12-1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 397 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 93
સાધુ પ્રતિપાદન વ્યાખ્યાનમાં કરે છે, જે જીવન તે પ્રકારે પ્રતિપાદન કરે છે, ઉપદેશે છે, અને તે સંબંધી વિશેષપણે જીવોને બીજા જીવોને પ્રેરણા કરે છે. જો અજક્ષાઈ સંકેત ન હોય, શું સમજાય તમે? અજક્ષાઈ સંકેત ન હોય, ઇનડાયરેક્ટલી કેવી રીતે વાત કહેવા માંગે છે, એવી જે પ્રેરણા કરે છે તે જુઓ. તેવા જીવો ઉપદેશક જીવો, જો તેટલી પ્રેરણા અને તેટલી ગમિષ્ઠા જીવના કલ્યાણને વિશે કરશે તો તે પ્રશ્નનું સમાધાન થવાનો ક્યારેક પણ તેમને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે. આવી માથા પ્રથમમાં ઉતર્યા વિના આત્મ કલ્યાણ કેવી રીતે થાય મોક્ષને એવું પ્રતિપાદન કરશે તો એમને પણ પોતાને ક્યારેક આવા પ્રશ્નોનું સમાધાન થવાનો અવસર આવશે. એમને આવા પ્રશ્નોનું સમાધાન કદી નહીં થાય. તે જીવો પ્રત્યે દોષ દ્રષ્ટિ કરવા યોગ્ય નથી. દોષ દ્રષ્ટિ એટલે એ લોકો દોષ કરે છે એમ સમજીને દ્વેષ કરવા યોગ્ય નથી. નિષ્કામ કરવા એ કરી માત્ર તે જીવો જોવા યોગ્ય છે. તેમના પ્રત્યે કરુણા રાખવી, નિષ્કામ કરુણા રાખવી, એવા જીવો પોતાનું વિહિત કરે છે તો એની કરુણા ચિંતવી. કોઈ પ્રકારનો તે સંબંધી ચિત્તને વિશે ખેદ આનંદ યોગ્ય નથી. તમારા ચિત્તમાં તમે ખેદ કરશો ને કે આવું કેમ પ્રતિપાદન કરે છે. આપણે તો આમ માનીએ છીએ કે ઉપરને ક્ષાયિક સંકેત છે અને આ મારા બધાને પ્રેરણા આપે છે કે આવું હોય નહીં, આવું હોય નહીં, આવું હોય નહીં. તમારે કંઈ ખેદ કરવાની જરૂર નથી, તમે ખેદ નહીં કરવાની. ऐसे प्रसंग में जीव को उसके प्रति क्रोधादि करने योग्य नहीं. आव प्रसंग हो त्यारे जीवे एवा मनुष्य प्रत्ये एवा उद्देशकों प्रत्ये क्रोध एटले द्वेष करवा योग्य. ऐसे जीवों को उपदेश करके समझाने की कदापि तुमको चिंता होती हो तो भी इसलिए उसके लिए तुम वर्तमान दशा से देखते हुए तो नहीं हो पाए है कि एवं जीवों प्रत्ये तुमने उपदेश देवा नहीं विचार आता है आने कहीं समझा गया है कि तुम्हारे आलू न कहूँ તો પણ વર્તમાન તમારી દશાને જોતા તમે નિયમ ઉપાય તમારી વાત કાંઈ સાધુ માને ને ગ્રહસ્થની વાત કાંઈ સાધુ માને એટલે અનુકંપા બુદ્ધિ ઓર સંતા બુદ્ધિ છે. એસે જીવો કે પ્રતિ સરળ પરિણામ છે દેખના એસા હિ ઈચ્છા રખના એસી હિ ઈચ્છા રખના यही परमार्थ मार्ग है ऐसा निश्चय रखना योग्य है. कहे कि एवं जीवों माटे अनुकंपा राखी अमुद्राय अनुकंपा राखी क्षमता राखी बुद्धि एटले अभिप्राय एवं जीवों प्रत्ये अनुकंपा बुद्धि और क्षमता बुद्धि ते जीवों प्रत्ये सरल परिणाम जुवो. આપણે તેના પ્રત્યે વક્ર પરિણામે ન જોવું, સરળતાથી જોવું અને એ જીવોનું નુકસાન થાય છે જરા દુઃખી થશે. આ કારણે કોઈ જીવ દુઃખી થાય એવું કેમ ઈચ્છીએ આપણે? કોઈ પણ જીવ દુઃખી થાય એવું કેમ ઈચ્છીએ આપણે? એમ સરળ પરિણામે જોવું તેમજ ઈચ્છો એમનું પણ કલ્યાણ ઈચ્છો તે જ પરમાર્થ માર્ગ છે અને તે સાચો માર્ગ છે. તેમના પ્રત્યે દ્વેષ કરવો તે સાચો માર્ગ નથી એમ નિશ્ચય રાખવો યોગ્ય છે. ફિલહાલ इनको जो कर्म संबंधी आवरण है यह भंग करने का, इनको ही जो चिंता उत्पन्न हो तो फिर तुमसे अथवा तुम जैसे दूसरे सत्संगी के मुख से कहीं भी श्रवण करने की बारंबार इनको उदास वृत्ति उत्पन्न हो, और कोई आत्मस्वरूप ऐसा सत्पुरुष के योग से मार्ग की प्राप्ति हो, परंतु ऐसी चिंता उत्पन्न होने का उनको समीप योग जो होवे तो फिलहाल ऐसी चेष्टा में बढ़ते नहीं। क्या कहते हैं कि हाल तेमने जे कर्म संबंधी आवरण छे, दर्शन मोहन मोटो आवरण छे, जे कर्म संबंधी आवरण छे एटले दर्शन मोहनो मोटो आवरण छे, ते भंग करवाने એટલે એ આવરણ તોડવા માટે, પોતાને દર્શન મોહ મટાડવા માટે તેમને જો ચિંતા ઉત્પન્ન થાય, પોતાને જો ચિંતા ઉત્પન્ન થાય તો પછી એ તમારાથી અથવા તમારા જેવા બીજા સત્સંગીના મુખથી કાંઈ પણ શ્રવણ કરવાની વારંવાર તેમને ઉલ્લાસ વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય, જો એમનો દર્શન જો ઘટે તો એ તમે અથવા બીજા સત્સંગી પાસેથી કાંઈક સમજવાની વૃત્તિ રાખે, અને કોઈ આત્મસ્વરૂપ એવા સત્પુરુષને યોગે એમને માર્ગની પણ પ્રાપ્તિ થઈ શકે। કેવા સત્પુરુષ? આત્મસ્વરૂપ એવા સત્પુરુષના યોગે, સત્પુરુષ તો આત્મસ્વરૂપે છે, એમને માર્ગની પ્રાપ્તિ થાય। પણ તેવી ચિંતા ઉત્પન્ન થવાનો તેમને સમીપ જોગ હોય તો હાલ આવી ચેષ્ટામાં વર્તે, મતલબ કે એસી યોગ્યતા હોવે તો એસી ચેષ્ટા કરે, માર્ગ કે સમીપ હોવે તો એસી ચેષ્ટા નહીં કરે કે જિસકે આવરણ ઓર બઢ જાય ઉસકો કર્મ કા દર્શન હોગા। और जब लग ऐसी जीव की चेष्टा है वहां तक तीर्थंकर जैसे पुरुष का वचन भी उसके प्रति निष्फल जाता है। जीव ऐसे तीव्र दर्शन में वर्तता है और ज्ञानी पुरुष के विरुद्ध लक्ष्य रख करके कोई प्रतिपादन करता है तो तीर्थंकर जैसे ज्ञानी पुरुष का वचन भी उनको असर नहीं कर सकता है। हम तो कभी छद्मस्त है लेकिन तीर्थंकर के वचन भी इसको असर नहीं कर सकता। क्या कहने का अभिप्राय है कि जिसको दर्शन मोह का तीव्र आवेश वर्तता, आवरण तो है लेकिन आवेश में वर्तते हैं, और ज्ञानी पुरुष के अभिप्राय विरुद्ध व्याख्यान करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, ऐसे जीवों को तीर्थंकर जैसे ज्ञानी पुरुष के वचन भी असर करेंगे तो फिर तुम्हारे जैसे के वचन का निष्फलपना होवे और उनको क्लेश रूप आसे उसमें आचरणाश्चर्य नहीं है तो पछी तमे साधारण मानस ने केवी रीते गणकाश એને તો ઉલટાનો ક્લેશ છે, અમને સમજાવ્યા સાધુ તો અમને સમજાવ્યા એમ લાગે, સાધુ પોતે સાધુ ઉલટા મારે છે। એસા સમજ કર ઉપર ઉપરોક્ત પ્રદર્શિત ક્યા હૈ એકી હૈ એસી અંતરંગ ભાવના હૈ, ભાવના છે ઉન લોગો કે પ્રતિ વર્તન રખના હૈ। આમ સમજીને ઉપર પ્રદર્શિત કરી છે તેની અંતર્ગ ભાવનાથી તેમના પ્રત્યે વર્તન, કરુણા બુદ્ધિને क्षमता बुद्धि है, અને કોઈ પ્રકારે પણ તેમને તમ સંબંધે ક્લેશનું ઓછું કારણ થાય એવી વિચારણા કરવી તે માર્ગને વિશે યોગ્ય ગણ છે. કિસી ભી પ્રકાર છે તમારી ઓર છે ઉન લોગોં કો ક્લેશ કા કારણ કમ હોવે એસી વિચારણા કરના એ ઇસ માર્ગ કે લીએ યોગ્ય હે લાયક હે. हमारे हमारा वर्तन से दूसरों को हम क्लेश में डाले ऐसा क्यों करें, क्या जरूरी है? वो प्रतिपादन जैसा करे वैसा करने दो, हम उसके साथ क्यों भी जाए और हम क्यों वाद विवाद में उतरे कि जिस कारण से क्लेश का कारण बने, आपस में विवाद करके क्लेश का कारण बने, ऐसा क्यों करें? और दूसरी एक भलामन को क्या कहते हैं, अच्छी बात है
सीख
सीख, और एक दूसरी सीख स्पष्ट रूप से लिखने योग्य भाषा भाषित होता है. एक दूसरी शिक्षा सीख देते हैं, एक बल निजी भलामन स्पष्ट पड़े लिखने योग्य भाषा से माते लखिए सिए इसलिए लिख रहे हैं, योग्य लगता है इसलिए लिख रहे हैं, जैसा परिणाम आता है वैसा बताते हैं, ऐसा योग्य लगता है तो लिख रहे हैं. यह है कि आगे हमने तुमको ऐसा बता ऐसा कहा था कि हमारे विषय में जैसा हो सके वैसा दूसरे जीवों के प्रति कम बात करना. क्या है कि कोई जैसे मनुष्यों को कृपालुदेव प्रत्यक्ष मिल गए, उन लोगों को बहुत अहोभाव हुआ. क्या कहे ऐसे महापुरुष का हमको प्रत्यक्ष साक्षात मिटा हो गया. वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे दूसरे जीवों को भी बोलते हैं, देखो ये ज्ञानी है महापुरुष है, इनके समागम में आना चाहिए, इनको सुनना चाहिए, वो करो ऐसा सही बताया. गोपाल देव का स्पष्ट शिक्षा है इस विषय में कि आपको हमारे विषय में किसी को कोई बात करना नहीं, हमारा प्रचार मत करिए. ऐसा बात में क्या है कि हमारे विषय में कोई प्रचार मत करो. यह अनुक्रम में वर्तन का लक्ष्य विसर्जन हुआ है तो अब स्मरण में रखना. आज हमने तुमने पहला पर कही हो तो ये बात तुम्हें भूली के लागू छो, तुम्हारी लक्ष्य बात भी लागे छो, तो बधाए स्मरण में राखो, ध्यान दे देवा मत ऊपर. તમારું ધ્યાન કંઈક ઓછું થઈ ગયું લાગે છે અને અમારા વિશે તમે કંઈક પ્રચાર કરતા હશો એવું લાગે છે. અમારે વિશે અમારે છે કહે હુએ કે લિખે હુએ વચનો છે વચનો કે વિષય મેં એસા કરના યોગ્ય હૈ. हमारा मते हमें कोई वचनों कया हो के तुमने लिखा हुआ है तो हमारो प्रचार नहीं करता ने हमारी बात में प्रचार नहीं करता, क्योंकि एमने बात को प्रचार को तो एम पर प्रचार थी जाए छे. जो पत्र मां लखे छे उद्देश नाम कहता था आ कहीं तुम्हारे करव नहीं.
मुख्य तो भक्तिभाव हवे बीजा ने बीजा पोताना મુખ્ય ભાઈઓ હોય એને પ્રેરણા આપે એને બધે અટકાયત કરે.
બીજા જિજ્ઞાસુને પ્રેરણા આપે એમાં વાંધો નથી, પણ કોઈને પ્રતિકૂળ પડે એવા માણસોને વાત નહીં કરવી જોઈએ કે જેથી એને ક્લેશ થાય કે દુઃખ થાય. જો લાયકજી રહે ઉનકો કહેના
वो तो उनके भले का कारण, भलाई का कारण है, उसका भी कल्याण होगा। लेकिन जिसको द्वेष वर्तता हो, ऐसे जीवों में या नए नए जीवों में ऐसा प्रचार करने से वातावरण थोड़ा द्वेष में या विरोध रूप हो जाता है, तो वहां प्रचार करना नहीं चाहिए। तो उन लोगों को नुकसान का कारण होता है, वो तो बेचारे अनजाने हैं, अज्ञान से वो विरोध कर बैठते हैं और बहुत उनको आवरण हो जाता है, दर्शन और मौका आवरण हो जाता है, तो बहुत दुखी हो जाएंगे भविष्य में, ये बहुत दुखी हो जाएंगे। तो ऐसा कोई दुखी हो ऐसा क्यों करें? और इसके कारण तुमको फिलहाल स्पष्ट बताना यह योग्यता बहुत नहीं, यह ठीक नहीं दिखता है, ये ठीक नहीं लगता है, शाम आते हैं उनको ऐसा कारण देना वाले तुमने जरूर थे, तथापि वह अनुक्रम से जो अनुसरण विसर्जन थवाए विसर्जन होता है, तो दूसरे जीवों को ऐसा का कारण भी होता है। हमने जो बात कही उनको अनुसरण करने में तुम भूल जाते हो, विसर्जन होता है मतलब स्मरण वैसे निकल जाता है, तुमने आप सूचना आपी है पर तुम्हें भूल जाओ। तो बीजा जीवन ने कृष्णा जी को कारण था, एक कारण थे तुम्हें देखा करो छो, बीजा का विरोध तुम उठाए शाम करो छो, यो भी अब क्षाई चर्चा, क्षाई की चर्चा वगैरह वगैरह के प्रसंग से तुमको अनुभव आ रहा है। जो व्याख्यान में क्षाई की चर्चा चाली रही है ये ऊपर से तुमने ख्याल आ जाए कि प्रतिकूल पड़े थे, सीधी नहीं पड़ती पर उल्टी पड़े थे, ये आवरण आवरण होता रहा है। जीव का जीव ने प्राप्त करवाते कल्याण नु कारण था, ते कारणों ने प्राप्ति ते जीवों ने आप विषय थकी अटके, केम के तेको पोताना अज्ञानपणा थी नथी ओळखाण पड़ी हुआ संकुल संबंधी तम वगैरह थी प्राप्त थयेली वात थी ते संपुरुष प्रति विमुखपणा ने पामे छे। एक प्रसंग एक छे, जिस कारण जिस प्रकार के कारण जीव को प्राप्त होने से कल्याण का कारण हो जाए, सत्पुरुष की पहचान होवे, सत्पुरुष का योग होवे, सत्पुरुष का उपदेश मिले, ऐसे कारणों से तो जीव को कल्याण का कारण हो जाए। ऐसे कारण की प्राप्ति वे जीवों को इस भव में बने ये बात प्रतिबंध रूप अटके से मैंने वो बात प्रतिबंध रूप होती है, उनको तो उल्टी पड़ती है, क्योंकि वे तो अपने अज्ञान पड़े से जिसका पहचान जिसकी पहचान नहीं हुई है ऐसे सत्पुरुष के विषय में आप लोगों से प्राप्त हुई बात से वे सत्पुरुष के प्रति विमुखपणा को प्राप्त होते हैं, उल्टू पड़े से उल्टा विमुख जाए से द्वेष करे से। तमें जे बात करी से तो हमने उखान तो करी नहीं, अज्ञान ने कारणे ये सत्पुरुष से विमुख जाए से विरोधी थे जाए से इनो विरोध करवा लागी जाए से व्याख्या के अंदर। तो ये प्रकारे એમને વિરોધ નો વળ ચડે એવી કોઈ આપણે વાત કરવી જોઈએ એમ કેવું છે? ભક્તિ તો પહેચાન છે એ હોતી હૈ, સહી ભક્તિ પહેચાન છે હોતી હૈ, ઉપસંજ્ઞા છે તો ભક્તિ હોતી હૈ, वो सही नहीं होती है, लेकिन जो भक्ति करता है वो विरोध तो नहीं करेगा। और संन्यास भी जो भक्ति करेगा वो विरोध तो नहीं करेगा, इसलिए कोई विरोध में नहीं चले जाए इसलिए भक्ति करे तो ठीक है। पर भक्ति करेगा तो आगे उनको पहचान पूर्वक भक्ति करने का अवसर आएगा, लेकिन जो विरोध करेगा उनको पहचान होने की संभावना कहाँ है, कहाँ से पहचान होगी उनको, उनको तो पहचान होगी ही नहीं, ये बात हो जाएगी। क्या कहा कि जिसको विरोध हो उनको विरोध बढ़े ऐसी बात नहीं करनी चाहिए।
विरोध
जैसे सतपुरुष का विरोध हुआ आएगा तो कभी देवता विरोध, अरे ज्ञानी का विरोध होता ही है, ऐसा नहीं होता कि ज्ञानी होते हैं तो सब उनके अनुकूल हो जाएंगे। ऋषभ भी भगवान हुए तो भी उनका विरोध करने वाले उस जमाने में उनके पौत्र थे मरीचि। तो ये तो चतुर्थ सतयुग के प्रारंभ से ये सिलसिला चला रहा। तीर्थों को तो बहुत पुण्य लेके आते हैं, फिर भी पूरे पुण्य किसी के नहीं होते, अधूरे ही होते हैं। तो तीर्थंकर का भी विरोध होता है, तो दूसरे दूसरे ज्ञानी का भी विरोध होवे उसमें कोई नई बात नहीं है। तो जो लोग विरोध में आते हैं उनके पास जाकर के उनकी प्रशंसा करेंगे तो और विरोध रह जाएंगे, इसलिए उनके पास जाकर के कोई हमारे विषय में या हमारे वचन के विषय में तुमको प्रशंसा करनी नहीं चाहिए।
पहचान करने के लिए ज्ञान के समीप रहो तो पहचान नहीं थी तब उसके बाद कितना ज्यादा समीप रहेंगे उसको भी पहचान होता है, दोनों एक साथ
ऐसा है कि पहचान तीव्र भावना होती है उसको पहचान होती है, जिसको पहचान करने का लक्ष्य ही नहीं होता है तो लोग संज्ञा से परिचय करता है या भक्ति करता है ऐसा पहचान कैसा होता है, इस तरह से पहचान नहीं होती, तीव्रता होती है पहचानने की, उसको पहचान होती है। पहचान होने का यही भी कारण है कि पहचान करने की तीव्र जिज्ञासा होने से पहचान होगी और पहचान होने से सही मुक्ति आएगी। वो तो 223 में तो काफी चला है विषय पर स्वाध्याय। ज्ञान पड़े से पहचान नहीं हुआ है ऐसे सत्पुरुष के विषय में तुम लोगों से प्राप्त हुई बात से वे लोग सत्पुरुष के प्रति विमुखपणा में विरोध में आते हैं और सत्पुरुष के विषय में आग्रह रूप से अन्य अन्य चेष्टा कल्पते हैं। छोटी मोटी बात करके भी द्वेष करते हैं, देखो तो व्यापार करते हैं हम लोग ने तो व्यापार छोड़ दिया है, फिर उल्टी सूटी भी बात लोग कर देते हैं, जो झूठी होती है ऐसे भी जो बात कर देते हैं, अफवाह जिसको कहते हैं अफवाह इसलिए फैलाते हैं क्योंकि इसकी समीप नहीं चलेगा, इससे दूर रहे, ऐसा होता है। इसके पीछे होता है विरोध करने वाले का अभिप्राय ऐसा होता है, इसलिए ज्ञानी पुरुष के विषय में आग्रह रख करके अन्य अन्य चेष्टा की कल्पना करते हैं, देखो ऐसा करता है, देखो ऐसा करता है, वो तो ऐसे करते हैं और ऐसा युग फिर से ऐसा युग फिर से होए, ऐसा विमुखपणा बहुत करके बलवानपणा को प्राप्त होता है। अनेक फरी तेव योग थे विमुखपण हो करीने बलवानपणे भावे फिर उनको अगर कोई कहीं ये हो जाता है तो जोर से विरोध करता है।
ऐसे लोक संख्या के कारण तो विरोध नहीं होता।
लोक संख्या के कारण से तो विरोध होता है, ज्यादा करके तो दक्षिण मोहों का आवेश और बढ़ता है, या जिसकी होना बहुत गड़बड़ वाली है, जिसकी होना अच्छी नहीं है, वो ऐसे जी विरोध में आ जाता है। जिसका भविष्य अच्छा नहीं है वो तो ज्ञानी पुरुष के विरोध में बिना मतलब भी आ जाते हैं, कोई मतलब से भी आते हैं, कोई बिना मतलब से भी आ जाते हैं। जो साधु लोग होते हैं उनको उस जमाने में ऐसा हुआ कि अरे हमारे संप्रदाय के लोग हमारे पास तो आ ही नहीं रहे हैं, वो तो जिसको ज्ञानी मानते हैं उनके पास जा रहे हैं। तो जैसे कोई दुकानदार को अपना ग्राहक दूसरी दुकान से माल लेता है तो जैसा उनको द्वेष होता है वैसा द्वेष वहाँ संप्रदाय के साधु लोग में हो जाते हैं, ऐसा बनता है। तो आने वाले को ग्राहक समझते हैं तो उनको अनुकूलता देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कपड़े देते हैं, वो नहीं वो इन्हें वधारे विरोध नहीं वो न करो। और इस भाव में इनको ऐसा योग जो ज्ञान पर ऐसे प्राप्त हो जाए तो शायद उसका कल्याण हो जाएगा, ऐसी धारणा रख करके अंतर में ऐसे ऐसे सत्पुरुष को प्रकट रखकर बाह्य प्रदेश से गुप्त पड़ा रखना बड़ा योग्य है। शू कहते एम न थवा देगा અને આ ભાવને વિશે તેમને તેવો યોગ જો અજાણપણે પણ પ્રાપ્ત થાય તો વખતે તેમનું શ્રેયને શ્રેય થશે, વખતે શ્રેયને પામશે એમ ધારણા રાખી અંતરંગમાં એવા સત્પુરુષને પ્રગટ રાખી બાહ્ય પ્રદેશે ગુપ્તપણું રાખવું વધારે યોગ્ય છે। શું કહેવું છે, ક્યાં કહેવા ચાહે कि इनको इस भव में अनजानपणे सत्पुरुष का योग होगा तो उसका शायद कल्याण हो जाएगा, ऐसा अभिप्राय रख लेना क्योंकि हम बताएंगे तो द्वेष में आ जाएंगे, तो बता नहीं अगर इनको कहीं योग हो जाएगा सत्पुरुष का अनजानपणे से तो विरोध में नहीं आएगा, और सत्पुरुष ऐसा जानकर होगा तो विरोध में आएगा। अनजान पड़े से कोई जगह प्रत्यक्ष योग हो जाएगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, हो सकता है ऐसा रख करके मन में ऐसा धारणा रख करके सत्पुरुष का गुप्तपणा बाहर में रखना और अंदर में सत्पुरुष को प्रकट रखना। क्या तुमको बाहर में सत्पुरुष की गुप्तता रखना और अंदर में गुप्तता नहीं रखना, अंदर में तो सत्पुरुष को प्रत्यक्ष और प्रकट रखना अपने परिणाम में, तो अंदर में दूसरी बात और बाहर में दूसरी बात ऐसा रखना। क्या अंदर में दूसरा रखना बाहर में दूसरा रखना, ऐसा गुप्तपणा माया कपट नहीं है, ऐसा गुप्तपणा वो माया कपट नहीं है। कभी ऐसा करना पड़ता है कि दूसरे जीवों को नुकसान होता है तो बात छिपानी पड़ती है, और ऐसी बात छिपाने का जो परिणाम होता है वो माया कपट गिना नहीं जाता, क्योंकि इसके पीछे कोई बुरा अभिप्राय नहीं है, अगले की भलाई का अभिप्राय होता है तो माया कपट नहीं
है। जब मुमुक्षु है, मुमुक्षु जब ये बात करते हैं इस प्रकार की तो उनको हम सही रास्ते पर है ऐसा एक अहम भी डेवलप हो सकता है, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और किसी को बता रहे हैं तो ऐसा अहम भी डेवलप हो जाएगा कि हम तो ठिकाने पर लग गए हैं ना, तो अपना आत्मा कल्याण वो चूक जा सकता है,
मतलब
अहम भाव उत्पन्न हो सकता है।
अहम भाव कहीं भी अहम भाव करे तो नुकसान हो जाएगा, किसी भी प्रकार से मुमुक्षु जीव अनुभव करता है तो नुकसान होगा ही होगा, कोई भी दाना पकड़ करके अनुभव अहंकार करने से तो फायदा है, वो तो मान कषाय, मान कषाय से क्या फायदा हो सकता है, हो ही नहीं सकता। ऐसा गुप्तपना रखना माया पर नहीं है, क्योंकि इस प्रकार में वर्तन करने में माया कपट का हेतु नहीं है। इस प्रकार का वर्तन करने में माया कपट का हेतु नहीं है, उसका एक कल्याण होता है वो नहीं हो गया उतना बात है, उसमें माया कपट का करने का कारण नहीं है। इनके भविष्य का कल्याण का हेतु है, कल्याण नहीं हुए और कल्याण हुए इतने कारण से ऐसा करना पड़े तो उसको माया कपट कहना नहीं चाहिए। अगर इसके कल्याण का हेतु है ऐसा होता है तो वह माया कपट नहीं होता है ऐसा हम जानते हैं। अब लिखते हैं, अब के जो घटना मरते हैं थोड़े अच्छे हैं वो, ये तो प्रासंगिक बात कर रही है। जो प्रसंग जमाने में कृपानुदेव के विरोध में संप्रदाय में चल रहा था इस विषय में मार्गदर्शन दिया है। अब कहते हैं कि जिसको दर्शन मोहनीय उदय पड़े बलवान रूप से बढ़ता है ऐसे जीव को मात्र शत्रुशादि की अवेद अवज्ञा बोलने का प्रसंग अपनी ओर से प्राप्त न हो इतना उपयोग रख करके वर्तना सिद्धिशाली बात है। यह इनका और उपयोग रखने वाले ऐसे दोनों का कल्याण का कारण है। सिद्धि बहुत सिद्धिशाली शिखावट है। जेने दर्शन मुनिय उदय पड़े बलवान पड़े वर्ते थे तीव्र दर्शन मुना आवेश वर्ते विरोध करता हुआ एवं जीव ने मात्र सत्पुरुष ने अवज्ञा बोलवा प्रसंग अपना थी प्राप्त तथा एटलो उपयोग राखी ने वर्तव एटले अपने एवं वर्तन न करव। જો ભાઈ એના સમજાય તો આવા છે બધા, આ તો બધા આવા છે, એને વધારે વિરોધ કરવાનું કોઈ કારણ મળે એવું વર્તન આપણું હોવું જોઈએ નહીં એમ કહેવા માંગે છે। શું એવી સાવધાની રાખવી, અને એવી સાવધાની રાખવી છે, સાવધાની રાખનારનું પણ એમાં ભલું છે કલ્યાણ છે અને સામાજિકનું પણ એમાં કલ્યાણ છે, નહીતર પોતાનું પણ કલ્યાણ છે અને સામાનું પણ કલ્યાણ છે, કેમ કે પોતે દોષ કરશે પોતાનું નુકસાન છે એ દોષને પકડીને લાગે છે જો આ તો આવા છે આવા છે આવા છે વાત કરે છે મોટી મોટી તત્વજ્ઞાનની। શું કે અમારી વાત તો બધા જે ઊંચી છે અને પાછા આ રીતે બધું કરે છે એને પકડીને એ સત્પુરુષની અવજ્ઞા વધારે ઉઠશે, પોતાની અસાવધાનીને લીધે બેદરકારીને લીધે બિનકાળજીને લીધે પોતાનું પણ અકલ્યાણ થશે અને સામાજિકનું પણ અકલ્યાણ થશે। પણ કે છે એ બહુ અચ્છા લીધા તીર્થંકર કે નામ સુધી ज्ञानी पुरुष की अवज्ञा बोलना तथा ऐसे प्रकार के प्रसंग में अग्रेसर होना यह जीव को अनंत संसार बढ़ाने का कारण है ऐसा तीर्थंकर कहते हैं। देखो तीर्थंकर का नाम ठीक है। ज्ञानी पुरुष ने अवज्ञा बोलवी તથા તેમના તેવા પ્રકારના પ્રસંગમાં ઉજવાળ થવો એ જીવનું અનંત સંસાર વધવાનું કારણ છે तीर्थंकर दिव्य धनिमा एवं फरमाता है, ऐसे फरमाता है कि ज्ञानी पुरुष का अपवाद बोलना, उसकी कोई निंदा करना, उसका कोई बुराई करना, और कोई बुराई करते हैं उसमें सपोर्ट करना, उसको अनुमोदन करना, हाँ हाँ ठीक कहते हैं, ऐसी बात उनको भी ऐसी लगती है, वो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे प्रकार में निर्वार्थों में आगे बढ़कर के इनिशिएटिव लेना, विरोध तो करना ही चाहिए, ये विरोध करने लायक है, बराबर विरोध करो, और सब मिल के विरोध करो, इकट्ठे होकर के विरोध करो, ऐसे प्रकार बन जाते हैं कभी कभी। यो जीव को अनंत संसार बढ़ाने का कारण है, हवा प्रकार ना परिणाम थे जीव ना अनंत संसार बढ़ जाए, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं। ऐसे पुरुष के गुणगान करना उनकी बात करते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष के गुणगान करना, पर उस प्रसंग में उन्माद होना, अग्रेसर होना, और उसकी आज्ञा में सरल परिणाम से परम उपयोग दृष्टि से वर्तना, यह अनंत संसार का नाश करने वाला तीर्थंकर कहते हैं। जो अनंत संसार का नाश करवाने की दुकान के देव पुरुष ना गुणग्राम करवा, गुणग्राम छता हो तेवा प्रसंग ना उज्वाल थो उपेश पुरुष ने गुणानुवाद करवा चाहिए, एवं प्रसंग हो तो आप एवं प्रसंग ने सारी रीते दीपावा जाइए छो અને નાની પુરુષની આજ્ઞામાં સરળ પરિણામે પરમ ઉપયોગ દ્રષ્ટિએ વર્તવું, સરળ પરિણામથી તેમની આજ્ઞામાં રહેવું, આજ્ઞામાં સરળ સરળતા ન કરવું, કોઈ સાથે પરમ ઉપયોગ દ્રષ્ટિ એટલે સાવધાનીથી વર્તવું, પોતાને પણ નુકસાન ન થાય, બીજાને પણ નુકસાન ન થાય, એ અનંત સંસારને નાશ કરનારો તીર્થંકર કહે છે। दर्शन वो टूटे थे नानी पुरुष ने गुरुग्राम करवाता पोता दर्शन वो घटे थे, दर्शन वो घटे थे तो अनंत संसार में नाश थाना कारण उत्पन्न थाय यथार्थ प्रकार घटे थे। नानी पुरुष ने गुरुग्राम करवा ते यथार्थपणे दर्शन वो ना अनुभाग ने तूटवा कारण है, परंपराए तेथी संसार तूटी जाए। ऐसे वचन जिनागम में है, ये वाक्य जिनागम में विषय है, ये बात नहीं करते, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात शास्त्र में भी है। घना जीवो ये वाक्य श्रवण करता हशे, तथापि प्रथम वाक्य ने अपवाद ने बीजा वाक्य ने सफल करू हो जीवो तो क्वचित कि जिनागम के ऐसे वचन बहुत जीव श्रवण करते होंगे, तथापि पहले वचन को निष्फल करे और दूसरे वचन को सफल करे। मैंने ज्ञानी पुरुष का अवर्णवाद करने को निष्फल करे और गुणगान करने का सफल करे, ऐसा जीव तो कुछ ही देखने में आता है, ऐसा जीव तो बहुत कम है, विरोध करने वाले आजकल ज्यादा है। और कृपा जीव के जो वर्तमान प्रत्यक्ष पड़े में तो विरोध करने वाले काफी लोग होंगे ऐसा दिखता है, क्योंकि उनके परिचय में गरीब गिने लोग आए थे, गुणग्राम करने वाले तो बहुत कम लोग थे, जबकि संप्रदाय का बड़ा समाज जो है वो विरोध में आ जाता है। और प्रथम वचन को सफल करने करे और दूसरे वचन को अफल करे,
ऐसा जीव ने अनंत बार किया है। प्रथम वचन को सफल करें, मैंने ज्ञानी पुरुष का विरोध करें और ज्ञानी पुरुष का गुरुनाम की निष्फलता करें उसमें, ऐसा तो हमारे जीव ने भी अनंत बार किया है। क्यों परिभ्रमण किया कि कभी कभी जाने अनजाने में भी ज्ञानी पुरुष का विरोध हो गया है तो अनंत संसार बढ़ गया है। ऐसा जीव ने एक बार नहीं किया, दो बार नहीं किया, अनंत बार किया है। अनंत काल कैसे निकाला? इस तरह से संसार बनाया है ज्ञानी पुरुष का विरोध कर करके। ऐसे परिणाम होने में जीव को समय नहीं लगता, सहन हो जाता है। ऐसा परिणाम होने में कोई समय नहीं लगता, हो जाता है। तेवा परिणाम आता तेने मुखत लागतो नथी, कारण के अनादिकाल थी मोहनाम मदिरा तेना आत्मा परिणाम पहनो छे। क्योंकि अनादिकाल से भोग नाम की मदिरा उस आत्मा में परिणाम किया है, दर्शनों की तीव्रता हो जाने से। जैसे कोई दारू पी के पागल होते हैं, मदिरा पी के पागल होते हैं, ऐसा उनको पागलपन चढ़ जाता है तो ज्ञानी पुरुष का भी विरोध कर बैठता है। इसलिए बारंबार विचार करके ऐसे ऐसे प्रसंग में यथाशक्ति यथाबल के लिए ऊपर में दिखाए हैं ऐसे प्रकार उस प्रकार से वर्तमान योग्य है। जो वर्तमान प्रसंग चल रहा था उसमें जो शिक्षा दी कि लोगों का क्लेश बढ़े, जरूरत बढ़े, ऐसा हम लोगों को कुछ करना चाहिए। माते बारंबार विचारी तिवा तिवा प्रसन्न यथाशक्ति यथा बल धीरे थी ऊपर दर्शित करा से जे प्रकार ते प्रकार वर्तव योग्य है। उपदेश प्रकार वर्तव જે બને એટલે શક્તિ છે અને બને એટલા પુરુષાર્થ કમા ન શકે એસા કોઈ વિરોધ તો કરશે, અરે તો કરે, પણ પોતે એને વિરોધ વધે એવું કાંઈ કરવું નહીં, ને તેના માટે પુરુષાર્થ રાખો, તેના માટે એટલા શક્તિ સાધના નહીં રાખો। કદાપી માનો क्षायिक संकेत इस काल में नहीं होता है। अब मूल विषय पर आते हैं, प्रथम को छोड़ करके जो बात की चर्चा और विवाद हो रहा है उस पर खुद अपना अभिप्राय लिखते हैं। कदापि एम धारो कि क्षायिक संकेत का कारण न हो, स्पर्श जीवना अगम्य विषय लिखो। हमें जीवे विचार योग्य है कि क्षायिक संकेत इतने शू समझ कदापि मानव के क्षायिक संकेत इस काल में नहीं होता है। ऐसा स्पष्ट जिनदेव के आगम में लिखा है तो अब यह विचारना योग्य है कि क्षायिक संकेत माने क्या समझना, क्षायिक संकेत माने क्या समझना। बहुत एक अच्छी बात लिखा है, क्षायिक संकेत को तुम क्या समझते हो। जिसमें एक नवकार मंत्र जेतुपूर्ण व्रत प्रत्याख्यान होतु नथी, जेमा एक नवकार मंत्र जेतू पण व्रत प्रत्याख्यान होतु नथी, छता तेजी विशेष तो त्रण भवे
અને નહીં તો તે જ ભવે પરમ પદને પામે છે એવી મોટી આશ્ચર્યકારક તો તે સંકેતની વ્યાખ્યા છે. સમ્યક દ્રષ્ટિ કોઈ સાક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ હોય તો ભી ઉસકો કોઈ બાહ્ય ચિહ્ન નહીં હોતા. કિસ પ્રકાર કા બાહ્ય ચિહ્ન નહીં હોતા કે એક નવકાર મંત્ર હંમેશા એક દફે નવકાર મંત્ર બોલના છે ઉતના ભી વ્રત ઉસકો નહીં હોતા, ઉતની ભી પ્રતિજ્ઞા નહીં લેતા, સાક્ષાયિક સંકેત હોતા હૈ. સંકેતી ધર્માત્મા તો જે મંદિર તો જાણા ચાહીએ કે નહીં જાણા ચાહીએ, ચલો હમ ચર્ચા કરે. સંકેતી ધર્માત્મા કો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય તો કરના ચાહીએ કે નહીં કરના ચાહીએ, તો કહેતે હૈ કે ક્ષાયિક સમ્યક દ્રષ્ટિ હોવે ઓર દિન ભર મેં એક દફે ભી નવકાર મંત્ર ભી નહીં બોલે, એસા હોને પર ભી ये संकेत का प्रभाव ऐसा है कि शाही संकेत वाला तो उसी भाव में निर्वाण परम पद की प्राप्ति हो जाती है. ये मिनिमम है और मैक्सिमम तीन भाव में उसका निबेड़ा हो जाता है. कितना बलवान परिणाम होता होगा सम्यक दर्शन का, शाही संकेत का, कि जिसको बाद में क्षायिक सम्यक दर्शन हो गए और एक दफे नौकार मंत्र बोलने का भी नियम नहीं हो गए, व्रत पक्ष का मैंने नियम नहीं हो गए. एक तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने की बात है. चूंकि हमारी बाह्य दृष्टि होने से बाह्य क्रिया क्या क्या होती है उस पर हम गिनती करते हैं अगले के. अच्छा दो चार घंटे शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वो जैन मंदिर में पूजा करने को जाते हैं और शुद्ध खाते हैं वो है, पानी छान के पीते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं वो है, फलाना है फलाना है, ऐसी गिनती होती है. शाही संकेत को क्या समझते हो? शाही संकेत ऐसा होता है कि दिन में एक दफे नौकार मंत्र नहीं बोले तो भी आगे जाकर के वही भाव में वो मुक्ति हो जाता है, या तीन भाव में तो उसकी मुक्ति हो ही जाती है. इस संकेत का प्रभाव है, क्षायिक संकेत का ये प्रभाव है, शुद्ध भाव का कोई प्रभाव नहीं है ऐसा कहते हैं. मंदिर जाना शास्त्र स्वाध्याय करने शुद्ध भाव का कोई प्रभाव नहीं है, सभी दर्शन का ऐसा प्रभाव है. ये बड़ी आश्चर्यकारक तो शास्त्र ने संकेत की परिभाषा डेफिनेशन किया है और ये संकेत का स्वरूप है, एक शायद संकेत का स्वरूप है ऐसा, कैसा शायद संकेत होने से छुटकारा हो ही जाता है भले अभी नौकर पुत्र का नियम भी नहीं हो उसको. त्यारे एवी के कई दशा समझ ली कि ये क्षायिक संकेत के बाद फिर इनको अंदर में कैसे दशा होनी चाहिए, कि जिसको हम क्षायिक संकेत कहते हैं वो बात कैसे होगी, वो स्वरूप कैसा होगा, इसका उस दशा का ज्ञान हमें करना चाहिए. जिज्ञासा से गहराई में जाकर के इस विषय की गहराई में जाकर के इसको समझना चाहिए. ऐसी बात है, भगवान तीर्थंकर ने विषय श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा, भगवान तीर्थंकर ने विषय दृढ़ श्रद्धा एणु नाम जो क्षायिक संकेत है हम गणिए तो ते श्रद्धा के ही समझते. मान लो कि तीर्थंकर देव के प्रति उनको बहुत श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा है, क्या इसका नाम क्षायिक संकेत है? अरे इसका नाम क्षायिक संकेत गिने तो वो श्रद्धा कैसी होगी? तो समझ में आता है, सम्यक दर्शन का परिणाम तो समझ में आता है. तीर्थंकर देव के श्रद्धा सर्वज्ञ के प्रभु के प्रति दृढ़ श्रद्धा, इसका नाम क्षायिक संकेत है क्या? अगर हो तो परिणाम कैसे होते होंगे दृढ़ श्रद्धा के? ऐसा हम जाने वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए कि जिस श्रद्धा से हम जानते हैं कि ऐसी श्रद्धा तो अवश्य इस काल में होती ही नहीं, कई समय दर्शन इस काल में होता नहीं। तो ये तीर्थंकर देव में जो श्रद्धा है ते अपने एम जानिए छे कि आ काल में खचित आ काल में कोई पाए नहीं, कोई संगठन मान्यता है। तीर्थंकर देव में दृढ़ श्रद्धा होने क्षाई समय दर्शन कहो तो ये श्रद्धा काल में है नहीं, श्रद्धा कई के प्रकार ने संत मिलती आ काल में है नहीं। जो एम जनात नहीं कि अमुक दशा के अमुक श्रद्धा ने क्षायिक संकेत कही है तो पशे ते नथी एम मात्र जिनागरना शब्द से ध्यान थी कही है अच्छी बात क्या है कि श्रद्धा का स्वरूप तो हम जानते नहीं और शास्त्र में ऐसा लिखा है कोई भी बात का विवाद को उठाता है तो वो उसका स्वरूप तो जाने दें और शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि नहीं है, ऐसा उल्लेख है ऐसा उल्लेख नहीं है, इसको पकड़ करके जो बात विवाद करते हैं तो ये तो जाना नहीं जाना वो तो उसका कोई फल तो है नहीं। तो पछी ते नथी ऐसी बात नहीं होती है, वो तो जिनागर के शब्द से मात्र जानना हुआ उसका तो कोई मूल्य है नहीं, उसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं। हम तो स्वरूप जानते नहीं है, आगे में वो बात है आगे में वो बात है ऐसा पकड़ करके विवाद करते हैं तो जानकारी किस काम की, इस जानकारी का कोई मूल्य नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हमें नियम धारो के शब्दों बीजा आश्रय कहवाया है, मानो के ऐसा कहना है राघव में तो शायद संकेत नहीं है तो इसके पीछे कोई दूसरा आश्रय हो सकता है अथवा कोई पाचड़ा काल का विसर्जन दोषे लखाया है। जिनागर भी भगवान के नाम में पीछे से लिखा है और काल दोष से उसमें गड़बड़ वाली बात भी लिखी है, सब जानते हैं तो सब जानते हैं कि लोग भगवान के नाम पर शास्त्र लिख देते हैं लेकिन वो महावीर स्वामी ने ऐसा कहा तो वो बात पाषण थी तो भगवान का वचन में ये बात प्रसिद्ध नहीं थी, पाषण थी काल दोष थी काल का विसर्जन दोष काल के जवा थी भी काल देवी बात रखेंगे तो तेने विषय आग्रह करीने ते जीवे प्रतिपादन कर्यु होय ते जीव केवा दोषने प्राप्त थाय ते सखेद करुणाए विचारवा योग्य छे। शुं कहे छे कि फिर ऐसे बात का आग्रह करके उसका प्रतिपादन करना और ऐसा प्रतिपादन करना करने वाले जीव को किस प्रकार का दोष होता है और इसका पुरुष को क्या मिलेगा वो तो सखेद करुणा से विचार करने योग्य है, खेद सहित करुणा आएगी शरीर बेचारा दुखी हो जाए ऐसी करुणा से वो बात को विचार करना चाहिए। तो आगे भी पत्र तो विस्तार वाला है, आगे भी क्षायिक संकेत की चर्चा के विषय में बहुत अच्छी बात लिखी है और अपने विषय में भी थोड़ा उल्लेख किया है
आओ आओ।